श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 116 पर आ गए, 116। देखो जरा, हम कल क्या देख रहे थे उसको देखते हैं। अब ये तिर्यंच गति की बात चल रही है। मार्गणाओं में हम बंध के स्वामी आदि उसकी चर्चा कर रहे हैं, नर गति की तो विस्तार से चर्चा हो चुकी। अब तिर्यंच गति में भी पंचेंद्रिय तिर्यंच, पहले तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, तिर्यंच योनिमति, इनकी बात चल रही है। तो उसमें हमने ये सारे प्रकृतियों के नाम देखे थे, जो हम दोबारा देखते 63 नंबर के सूत्र में पृष्ठ संख्या 112 पर, क्योंकि उन्हीं प्रकृतियों के बारे में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं अपने। यहाँ लिखा है तिर्यक गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में, इतने जीवों की बात चल रही है, अन्य जीवों की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता असाता वेदनीय, आठ कषाएं, ये आठ ही कषाय लिए, क्योंकि पहले से पांचवें तक जिनका बंध चलता है उसकी बात है। तो पांचवें में अनंतानुमंदी और प्रत्याख्यानावरण नहीं बनते, इसलिए वो आठ ही लिए, जो बंधने वाले पांचवें में बंधने वाले को लिया यहां, तो वो पहले से पांचवें तक है ऐसा कहेंगे। आठ कषाय, पुरुष वेद, हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियक तेजस कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्राज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, निर्माण, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका बंधक कौन है और अबंधक कौन है, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। तो उसमें बता दिया कि मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक बंधक है। अब उसकी चर्चा करते हुए अभी हम वो कौन से स्वोदय से बनते हैं, कौन से परोदय, उसकी चर्चा की हमने। अब ये पृष्ठ संख्या अभी हम 116 पर आ गए हैं। वो सांतर निरंतर की बंध की बात चल रही थी, उसमें से भी हम आठवीं लाइन में आए हैं, आठवीं पंक्ति में। ये कौन सी सांतर है, कौन सी निरंतर है, उसकी बात कल हमने देखी ना। देखो पहले पृष्ठ पर देखना, 115 पर, इसमें से जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं उनका तो निरंतर बंध होता है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आदि। फिर जो प्रतिपक्ष वाली है, जैसे साता है, असाता है, स्थिर है, अस्थिर है, जो कुछ है, तो उनके प्रतिपक्ष वाली तो ये सांतर बंध होता है। अब पुरुष वेद संबंधी जो है, मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टियों में तो सांतर बंध है, और ऊपर के गुणस्थानों में निरंतर बंध है। दूसरी भी बात की थी, भले मिथ्या दृष्टि होवे और पद्म और शुक्ल रेशा वाले होवे, तो वो तो निरंतर पुरुष वेद का भी बंद करेंगे। अब 116 पृष्ठ पर भोग भूमि के, क्योंकि देव में ही जाते हैं ना, तो और उनके शुभलेशाएं होती है वहां पर, और पर्याप्त काल में अशुभ होती है, परंतु यहाँ तो देखो ये जो पंचेंद्रिय त्रस बादर पर्याप्त वगैरह जो प्रकृतियां हैं उनका मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में शांत निरंतर बंद होता है, क्योंकि अन्य भी जाति कर्म बंधेगी वहां, इसलिए। और तेज पद्म शुक्ल लेशा वाले जीवों में इनका निरंतर बंध देखा जाता है, क्योंकि वे जीव एक इंद्रियादि अन्य प्रकृतियों को, अशुभ प्रकृतियों को नहीं बांधेंगे। और ऊपर के गुणस्थानों में निरंतर बंध है, यानी दूसरे से लेकर ऊपर, क्योंकि वहां वो ये जो स्थावर है, अपर्याप्त है, सूक्ष्म है, ये इन प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में होती है। तो पहले गुणस्थान के लिए ये त्रस बादर पर्याप्त के लिए प्रतिपक्ष है, इसलिए शांतर। और ऊपर के गुणस्थानों में यही प्रकृति बनती है, इसलिए कहेंगे निरंतर। अभी तो तिर्यंश की ही बात चल रही है, तिर्यंश में ही अभी लेना, ये मनुष्य की बात बाद में आएगी। हम मार्गणाओं में चल रहे हैं ना, अपना मार्गणाओं का प्रकरण चल रहा है अपना। जब वो लेशा मार्गणा आएगी ना, तो केवल वहाँ अकेले लेशा की चर्चा होगी, फिर उस लेशा में कौन से गति वो सब बताएंगे। यहाँ तो तिर्यंश गति की बात चल रही है, तो तिर्यंश गति में शुक्ल पद्म शुक्ल लेशा वालों की बात हो गई। अब ये समचतुरस्र संस्थान का बंध मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टियों में शांतर निरंतर है। शांतर क्यों है? क्योंकि प्रतिपक्ष है। अब निरंतर किस में है? तो असंख्यात वर्षायुष्क, क्योंकि वे तो देवगति को ही बांधेंगे। ये आपका प्रश्न था ना असंख्यात, तो असंख्यात वर्ष वाले यानी अभी भोग भूमि के जीव, वो समचतुरस्र संस्थान को बांध रहे। तिर्यंच असंख्यात, तिर्यंच की बात चल रही है। असंख्यात वर्ष वाले तो नारकी भी होते और देव भी होते, अभी यहाँ मार्गणा हमारी तिर्यंच की चल रही है। तो तिर्यंचों में जो असंख्यात वर्ष वाले हैं, यानी भोग भूमि के जो तिर्यंच है, कर्म भूमि के तिर्यंच तो संख्यात वर्ष की आयु वाले, तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो तिर्यंच है उनमें निरंतर बंध देखा जाता है। और दूसरी बात, जो तेज पद्म और शुक्ल लेशा वाले अन्य तिर्यंच है उनमें भी निरंतर बंध होगा उसका, क्योंकि एक एक लेशा में कम से कम अंतर्मूर्त तो रहेगा ही जी, तो वह अंतर्मूर्त उसका निरंतर बंध रहेगा। उपरिम गुणस्थानों में उसका निरंतर बंध होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। ये किसके बंध की चल रही बात? संस्थान संबंधी, समचतुरस्र संस्थान के, क्योंकि पहले गुणस्थान में 6 में से एक संस्थान बनता है, दूसरे में 5 में से एक, और यहाँ ऊपर एक समचतुरस्र संस्थान ही बनता है, तो उसका निरंतर बंध कहेंगे। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आगे परघात और उच्छ्वास प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में शांतर निरंतर बंध देखा जाता है। परघात का और उच्छ्वास का पर्याप्त नाम कर्म के साथ बंध होगा, है ना? जो अपर्याप्त कर्म को बांध रहा है, जो मिथ्या दृष्टि जीव, तो उसके साथ परघात को और उच्छ्वास को नहीं बांधेगा, क्योंकि अपर्याप्त के बंध के संयुक्त, बंध के संयुक्त है ने, जब अपर्याप्त नाम कर्म बंध रहा है तो साथ साथ ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। संयुक्ता का अर्थ हमने देखा था ना, कौन से गति संयुक्त, ऐसा देखा था। तो अपर्याप्त के बंध के संयुक्त इनके बंध का अभाव है, क्योंकि अपर्याप्त नाम कर्म का जिसको उदय होता है तो उसको ये परघात उच्छ्वास का उदय होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले उसका मरण हो जाता है। उन जीवों ने ये कर्म बांधे ही नहीं ना अपर्याप्त के साथ। तेज पद्म एवं शुक्ल निष्ठा वाले संख्यात वर्षायुष्क और असंख्यात वर्षायुष्कों में निरंतर बंध देखा जाता है। यानी जो तेज पद्म और शुक्ल यानी जो शुभ लेशाएं हैं, शुभ लेशा वालों को परघात और उच्छ्वास प्रकृति का निरंतर बंध है। विशुद्धि से बनती है ना वे, और संकलेश परिणामों में उसके उल्टे उसको बांधेगी। एक बात, और दूसरे असंख्यात वर्षों वाले में भी निरंतर परघात उच्छ्वास का बंध होता है, क्योंकि वे तो पर्याप्त नाम कर्मों को बांधेंगे। हमने देखा था वहां से मरकर तो देवगति में जाने वाले हैं, तो देवगति के साथ त्रस बादर पर्याप्त यही प्रकृतियां बंधेगी, तो उसके साथ साथ परघात उच्छ्वास भी बंधेगा। उपरिम गुण स्थानों में दोनों प्रकृतियों का निरंतर बंध होता है, क्योंकि उनमें अपर्याप्त के बंध का अभाव है। अपर्याप्त के बंध की विच्छित्ति पहले में होती है, दूसरे से ऊपर अपर्याप्त नाम कर्म बनता ही नहीं है। प्रशस्त विहाय गति का मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर बंध होता है। सांतर क्यों? क्योंकि वो प्रतिपक्ष है ना अप्रशस्त विहाय गति, और निरंतर किसमें होगा? तो तीन शुभलेशा वाले इसी का बंद करेंगे, प्रशस्त विहाय गति का ही बंद करेंगे। जो अभी तक हमने देखा था तेज पद्म शुक्ल लेशा वालों में, तो वे सभी प्रशस्त प्रकृतियां जो कुछ है उनको निरंतर बांधते हैं। ऊपर भी हमने देखा था ना सम चतुरस्र संस्थान में, पुरुष वेद में, उसी का बंद करते हैं, क्योंकि तीन शुभ तीन लेशा वाले संख्यात वर्षायुष्क, ये एक क्राइटेरिया। और दूसरे कौन बांधते हैं? तो असंख्यात वर्षायुष्क जो है वे निरंतर उसमें बंध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानों में उसका निरंतर बंध होता है, क्योंकि अप्रशस्त विहाय गति के बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है? दूसरे गुणस्थान में। तो तीसरे से ऊपर एकमात्र प्रशस्त विहाय गति का ही बंध होगा, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का अभाव है। शुभ सुस्वर और आदेय प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर बंध होता है। यहाँ प्रतिपक्ष है ना अशुभ भी बंधेगी, दुस्वर भी बंधेगी वगैरह, क्योंकि अशुभ दुस्वर अनादेय ये दुर्भग को क्यों छोड़ा यहाँ? ऊपर क्या लिखा है? एक मिनट है, प्रसतव्य आई गई सुहतिया निरंतर शुभ सुस्थिर आदेज अस्थिर अशुभ हमेशा हम दुर्भग को लेते थे ना, सुभग और दुर्भग को। सुभग नहीं लिया 113 में? हाँ, शुभ अशुभ सुभग सुसुर आदि, क्योंकि अशुभ की बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है? छठे में होती है, अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति वगैरह। नहीं नहीं, मगर यहाँ नहीं लेना था, नहीं यहाँ शुभ के बदले सुबह का। शुभ सुस्वर आदि लिखा ना, क्योंकि सासाधन तक ही लिया, और सासाधन में तो सुभग के दुर्भग के बंध की विच्छित्ति होती है। यहाँ सुभग को अलग से लिया ही नहीं ना उन्होंने। एक मिनट, सांतर निरंतर वो पहले ही बात की होगी उन्होंने पहले पृष्ठ पर। अस्थिर शुभ अशुभ उन्होंने लिया है पहले ही, यानी यहाँ उसको नहीं लेना था। देखो 115 पृष्ठ पर तीसरी लाइन से पढ़ेंगे अभी हम अंत में, साता असाता हास्य रति अरति शोक, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, ये सब लिए ना, तो ये सब सांतर बंध होता है क्योंकि उनकी बंध विच्छित ऊपर तक चलती है, इसलिए सांतर बंध हुआ है यहाँ। अब यहाँ जो लिखा है शुभ लिखा, उसके बदले वहां शुभ का होना चाहिए था। नीचे से चौथी लाइन 116 प्रश्न, अभी यहाँ पर शुभ को फिर दोबारा कैसे लेते हैं, शुभ का रह गया है, शुभ की बात ही नहीं आई, तो यहाँ शुभ के ऊपर भी वो प्राकृत में भी वहां करेक्शन चाहिए। शुभ सुस्वर लिखा है ना, वो शुभ ग चाहिए, शुभ सुस्वर लिखा है ना तो शुभ ग, आगे ग रह गया है तो शुभ का शुभ कर दिया उन्होंने। शुभ के लिए कौन सा, शुभ के लिए क्या शब्द आया था, सुबह सुबह लिखा था उन्होंने, सुबह सुबह, यहाँ सुबह ग होना चाहिए। प्राकृत में सुबह ग करना और नीचे भी, वहां तो एक केवल ग लगाना है। और यहाँ नीचे से चौथी लाइन में शुभ सुस्वर है, वहां सुबह ग करना, पढ़ू मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ। सुबह सुस्वर और आदेय, ये तीनों का एक साथ क्यों लिया, क्योंकि दुर्भग दुस्वर और अनादेय के बंद की विच्छित्ति दूसरे में होती है। देखो सुबह सुस्वर और आदेय प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर बंद होता है। सांतर क्यों होता है, क्योंकि वो उसके प्रतिपक्ष प्रकृति है, और निरंतर किस में है, तो शुभ लेशा वालों में, क्योंकि शुभ तीन लेशा वाले संख्यात वर्षायुष्क और असंख्यात वर्षायुष्कों में निरंतर बंध देखा जाता है। ऊपर निरंतर बंध होता है क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है, तो यहाँ शुभ को या अशुभ या शुभ को नहीं लेते, यहाँ शुभ ही होना चाहिए था। देवगति देवगति प्राज्ञानुपूर्वी वैक्रेक शरीर वैक्रेक अंगोपांग और उच्च गोत्र का मिथ्या दृष्टि एवं सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर बंद होता है, क्योंकि शुभ तीन लेशा वाले संख्यात वर्षायुष्क और असंख्यात वर्षायुष्कों में निरंतर बंध पाया जाता है। शुभ लेशा वाले तो देवगति को ही बांधते हैं और असंख्यात वर्षायुष्क वाले भी देवगति को ही बांधते हैं, इसलिए उनमें तो निरंतर है। और अन्य जो जीव है मिथ्या दृष्टि और सासाधन तिर्यंच है, तो कौन सी गति बांध सकते हैं, तिर्यंच मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव कौन सी गति बांध सकते हैं, चारों गति में से, हाँ ये ऑप्शन है, तो वहां सांतर कहां, और सासाधन वाले तीन गति में से कोई बांधे, हाँ इसलिए देवगति के लिए वहां प्रतिपक्ष है। और वैक्रेक शरीर वैक्रेक अंगोपांग के लिए भी प्रतिपक्ष है, क्योंकि मनुष्य तिरंज गति बांधेंगे तो औदारिक औदारिक अंगोपांग का बंद करेंगे, इसलिए उन दोनों के लिए प्रतिपक्ष है। उच्च गोत्र के बदले देवगति के साथ तो उच्च गोत्र बंधेगा, जो तिर्यंच तिर्यंच गति बांधेगा या नरक गति बांधेगा उसके लिए निज गोत्र का बंध करेगा। ऊपर निरंतर बंध है तिर्यंचों में, अभी प्रत्ययों की चर्चा चल रही है। तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टियों के मूल प्रत्यय चार होते हैं, उत्तर प्रत्यय 53 होते हैं, क्योंकि अभी तिर्यंच है तो हम सामान्य से 55 देखते थे मिथ्या दृष्टि के लिए आहारक द्विक के बिना, अब उसमें वैक्रेक वैक्रेक मिश्र को भी नहीं लेना है, यहाँ वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र प्रत्ययों का अभाव है। विशेष इतना है कि देवगति चतुष्क के 51 प्रत्यय होते हैं। देवगति चतुष्क का अर्थ है देवगति का बंद हो रहा है ना, जो तिर्यंश देवगति का बंद कर रहा है उसकी बात है। तो उसके लिए कितने 51 प्रत्यय हैं, क्योंकि वैक्रेक वैक्रेक मिश्र औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों का अभाव है। अपर्याप्त जो जीव है, अपर्याप्त अवस्था में देवगति बांध दी जाती है, अपर्याप्त अवस्था में कोई नहीं बांधता, इसलिए कोई अन्य भी गति नहीं बनेगी अपर्याप्त अवस्था में। ऐसी है, हाँ, तिर्यंश गति बन सकती है, मनुष्य गति बन सकती है, देवगति और नरक गति नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ कहते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट पहले चुनी है कि उन प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो देवगति का बंध जो है तिर्यंश जीव अपर्याप्त अवस्था में नहीं करेंगे, उसकी बात चल रही है। क्योंकि वैकरिक वैकरिक मिश्र औदारिक मिश्र और कारण प्रत्ययों का अभाव है। एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 18 होते हैं। सासादन सम्यक दृष्टि के मूल प्रत्यय 3 और उत्तर प्रत्यय 48 होते हैं। देखो इसका अर्थ समय, ये ऊपर की बात कर रही मैं, जो सम्यक दृष्टि है ना, तिर्यंशों में जन्मने वाला भोग भूमि में सम्यक्त्व के साथ, वो भी औदारिक मिश्र अवस्था में देवगति को नहीं बांधेगा। ये सिद्ध होता है ना, क्योंकि उसकी अशुभ लेशा होती है तिर्यंश में जन्मने वाले के। एक समय संबंधी देखा हमने, अब ये तो मिथ्यात्व गुणस्थान की बात हो गई। सासादन सम्यक दृष्टि के मूल प्रत्यय 3 मिथ्यात्व के बिना, उत्तर प्रत्यय 48 होते हैं, वैकरेक चतुष्क के मूल प्रत्यय 46 होते हैं। वैकरेक चतुष्क ने देवगति देवगत्यान पूर्वी वैकरेक वैकरेक अंगोपा, उसको बांधने वाले के 40 होते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त प्रत्ययों का ही अभाव रहता है। यह कारमाण औदारिक मिश्र वगैरह का अभाव है। एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 17 होते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के मूलोग प्रत्यय ही होते हैं। मूलोग है ने जैसे गुणस्थान में हमने देखे थे, गुणस्थान में हमने तीसरे गुणस्थान में 43 देखे थे ना, और चौथे गुणस्थान में 46 देखे थे। अब यहाँ है तिर्यंश की बात, हाँ हाँ बताए ना, ये 9 अनंत अनुबंधी है ना, वहां पर मिथ्यात्व नहीं है, परंतु वहां जो 10 ऊपर कहे थे, 10 मिनिमम 10 कहे थे मिथ्यात्व में, तो अनंत अनुबंधी के विसंयोजन वाला लिया था वहां। देखो विशेष है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के मूलोग प्रत्यय ही होते हैं। दो बार हुए, विशेषता यह है कि ये दो बार हुआ है नीचे, एक बार ही चाहिए था, दो बार हुआ है। वो बीच वाला विशेष है नीचे निकाल देना, विशेषता यह है कि रखना नीचे वाला। ऊपर भी देखो ना, इसमें प्राकृत में नीचे से छठी लाइन, सम्माम इच्छा इच्छा इट्ठी, सम्माम इच्छा इट्ठी चाहिए, पढ़ने जाओ तो भूल निकलती कुछ, सम्माम इच्छा इट्ठी चाहिए। सम्मा मिच्छा इच्छा इट्ठी हुआ है।
तो इच्छा को निकल दो,
इच्छा निकालना बीच की। अश्विन भाई ऊपर प्राकृत में नीचे से छठी लाइन सम्मा मिच्छा इट्ठी चाहिए। सम्मा मिच्छा इच्छा इट्ठी हुआ है ना, वो बीच वाली इच्छा निकाल देना।
इच्छा कम करो
तो वितराग हो जाओगे इच्छा कम करने से। तो सम्मा मिच्छा इट्ठी असंज सम्मा दिठ्ठीनम मूलोग पच्चया चेव, वो तो हमने रखा है नीचे कि सम्य मिथ्या दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि के मूलोग प्रत्यय ही होते हैं। उसके आगे नवरी, नवरी यानी विशेषता यह है कि नवरी सम्मा मिच्छा इट्ठिमी वेयुवीय काय जोगो असंज असंजत सम्मा दिठ्ठिमी वेयुवीय वेयुवीय मिस जोगा अवणे दौवा। अभी उसका अर्थ नीचे, बीच वाली एक लाइन नीचे की भी निकाली ना, अब उसके आगे की देखो। विशेष यह है कि वो निकाली और फुल, और विशेषता यह है कि वो अभी हम पढ़ रहे हैं। फुल लाइन निकालना है, डबल हुई है। विशेषता यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थानों में वैक्रिक का योग और असंयत सम्यक दृष्टि में वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र योगों को कम करना चाहिए। तो तीसरे में क्यों नहीं वैक्रेक मिश्र कम किया, तो ऑलरेडी हमने कम करके ही वो पहले संख्या गिनाई थी ना, इसलिए। यह मिश्र को क्यों कम किया असंयत में वैक्रेक मिश्र को? चौथे गुणस्थान वाला वैकिरिक मिश्र तो हो सक ये तीरियन चंग की बात चल रही है, हम भूल जाते हैं ना कहाँ से शुरू किया था। इसलिए संयता संयत गुणस्थान में ओघ प्रत्यय ही होते हैं। तो उसमें हमने कितने देखे थे ओघ में, चौथे में 46 होते थे ना, और उसमें से चार कम हो गए पांचवे वाले के, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान हाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माए लोग, वो कम हो गए वहां। इस प्रकार चार प्रकार के तिर्यंचों के प्रत्ययों की प्ररूपणा की। चार प्रकार कौन से देखे? तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी। पंचेंद्रिय कहने की जरूरत नहीं है, पंचेंद्रियों में ही योनिनी होती है, योनिमति। अन्य तो चतुर इंद्रिय तक तो नपुसक वेदी होते हैं सारे। विशेषता यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों में काय योग, पुरुष वेद और नपुसक वेद प्रत्यय कम करना चाहिए। कौन सा काय योग? काय योग की कहां बात आई? दो ही ये कायोग निकाल देना शब्द। देखो ऊपर पढ़ना, नवरी पंचेंद्रिय तीरिक्ख जोनी नीसु पुरिस नवुंसय पच्चया अवणे दौवा। कायोग की बात नहीं है, कायोग शब्द निकाल देना वहां से, क्योंकि वहां वेदों में ही डिफरेंस है, बाकी अन्य में कुछ नहीं है। ऐसा कहें वहां तो असंयत समय दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो गया, ऐसा कह सकते वहां। अब इनको असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में, इनको यानी वो योनिमति को, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों को कम करना चाहिए, क्योंकि असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान वाला योनिमति में उत्पन्न नहीं होगा। एक्चुअली हम ऊपर का पढ़ नहीं रहे, प्राकृत का, प्राकृत का पढ़ते तो कुछ ना कुछ उसमें भी कम ज़्यादा निकल आता है। हाँ, और उससे अपना नीचे का भी क्लियर होता है ज़्यादा। पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, यानी कौन से गति के संयुक्त बन रहा है उसकी बात चल रही है अभी। ये पहले के प्रश्नों का उत्तर हो गया, अब कौन से गति संयुक्त बनती है बातें ये, तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, अरति शोक, भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, ये किसके साथ बनते हो गए? अभी हमने लिस्ट पूरी नहीं पढ़ी है। हाँ बोलो, पढ़ के नहीं पूछ, बताना। हाँ, कौन से गति के साथ बनते हो गए? मनुष्य गति। आप क्या कहते हैं? पांच ज्ञानावरण कौन से गति के संयुक्त? चारों गति। अभी हमने लिस्ट नहीं पूरी, ये तो सबके लिए होती होगी ना, किसी भी गति के लिए ये तो होगा ही। मनुष्य गति बांध रहा हो या देव या तिर्यंश या नारकी कुछ भी हो, तो उसके साथ पांच ज्ञानावरण ये दर्शनावरण सारे बंधेगी, आठ कषाय। अब ये जो पांचवें गुणस्थान में अकेले उसकी बात करते हैं, तो पांचवें गुणस्थान वाला किसको बांधेगा? तो देवगति को बांधेगा। तो पांच ज्ञानावरणीय फिर पढ़ती हूँ, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, निर्माण और पांच अंतराय, इन प्रकृतियों के मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त। इन प्रकृतियों को बांधने वाला जो मिथ्या दृष्टि है, वो इन प्रकृतियों को चारों ही गतियों के संयुक्त बांध सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि कितने गतियों के साथ बांधेगा इनको? तीन गतियों के साथ। और शेष जीव देव गति से संयुक्त बंधक है। शेष यानी तीसरा चौथा गुणस्थान वाला जो है, ऊपर का जो पांचवा भी। ये ख्याल में आए कौन से गति के संयुक्त? आसान है, उसमें कोई बात नहीं। साता वेदनीय हास्य और रति को मिथ्या दृष्टि एवं सासाधन सम्यक दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त। मिथ्या दृष्टि जीव बांधता तो चारों गतियां हैं, परंतु जब नरक गति बांध रहा है तब साता वेदनीय हास्य और रति का बंध नहीं होगा उसके साथ साथ। नरक गति बनती है तो अन्य भी बहुत सारी अशुभ प्रकृतियां बनती है उसके साथ। तथा शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। शेष यानी दूसरे गुणस्थान के ऊपर वाले। देखो फिर इसको पढ़ती हूँ। साता वेदनीय हास्य रति को मिथ्या दृष्टि एवं सासाधन सम्यक दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त। उदय हो सकता है, नरक गति के साथ नहीं बांधता है उसको, परंतु उसमें हमने उदय में देखे थे उसके, हाँ, तीन गतियों से संयुक्त। और शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। शेष यानी तीसरे चौथे, तीसरे वाले को क्यों नहीं बांधती? अन्य गति क्यों नहीं बनती? मनुष्य गति क्यों नहीं बनती? आयु की बात नहीं, तीसरे गुणस्थान वाले तिर्यंश को मनुष्य, हाँ, तिर्यंशों में मनुष्य गति दूसरे गुणस्थान तक ही बन सकती है। ऊपर वो तिर्यंश गति की उदय बंध की विच्छित्ति होती है, तो मनुष्य गति की भी बंध की विच्छित्ति होती है। तिर्यंश और मनुष्यों के लिए ये नियम है। देव तो चौथे गुणस्थान तक मनुष्य गति बांधेंगे। यहाँ अपनी बात तिर्यंशों की चल रही है। पहले और दूसरे गुणस्थान में पहले गुणस्थान वाला तो चारों गति का बंध करता है, परंतु यहाँ साता के साथ किसका बंध हो रहा है? नर गति का नहीं हो रहा है। तो तीन में से यानी देव नरक या देव मनुष्य या तिर्यंश गति के साथ साता वेदनीय हास्य रति का बंध हो रहा है। दूसरे गुणस्थान वाला भी तीन गतियों से संयुक्त तो उसका बंद कर रहा है। तीसरा और चौथा तो देवगति को ही बांधेगा, पांचवा भी। इसी प्रकार वो बराबर नहीं आया था ना, हाँ। इसी प्रकार यश कीर्ति को भी बांधते हैं, क्योंकि इसके कोई विशेषता नहीं है। जैसे नरक गति के साथ अयश कीर्ति का बंद होता है, यानी जो रूल अभी हमने साता के लिए और हास्य रति के लिए लगाया, वही रूल यहाँ यश कीर्ति के बारे में भी होगा, क्योंकि जो नरक गति बांध रहा है उसके साथ अयश कीर्ति का बंध करेगा। असाता वेदनी और अयश कीर्ति को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त। असाता बांधने में तो कोई है नहीं, वो तो अन्य गति के साथ भी उसका बंध होता है। सासादन तीन गतियों से संयुक्त और शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं। पुरुष वेद को मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्य दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, क्योंकि पुरुष वेद तो तीन गतियों में भी पाया जाता है, नरक गति में तो होता ही नहीं, एक नपुसक वेद ही होता है। शेष जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं, शेष यानी तीसरे चौथे पांचवें गुणस्थान वाले। समचतुरस्र संस्थान प्रशस्त विहार गति सुभग सुस्वर और आदेय, यहाँ सुभग लिया ना, वैसे वहां हमने जो करेक्शन किया था, प्रकृतियों का गति संयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिए। देवगति और देवगति प्रायज्ञान पूर्वी को सब देवगति से संयुक्त बांधते हैं, वो तो कुछ अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर अंगोपांग को मिथ्या दृष्टि देव व नरक गति से संयुक्त, यानी देव गति से संयुक्त और नरक गति से संयुक्त, मिथ्या दृष्टि देव ऐसा नहीं लेना उसमें। मिथ्या दृष्टि, अभी यहाँ बात तो तिर्यंचों की चल रही है, जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है वो वैक्रियक शरीर का और वैक्रियक शरीर अंगोपांग का बंध कैसे करेंगे, तो जो देव गति बांध रहे वो भी बांधेंगे उसको, और जो नरक गति बांध रहे उसके साथ भी वैक्रियक वैक्रियक अंगोपांग का बंध होगा। स्थिर और शुभ प्रकृतियों का गति संयोग साता वेदनीय के समान है। साता वेदनीय के साथ हमने देखा था कि नरक गति के साथ संयुक्त तो उसका बंध नहीं है, उसी प्रकार स्थिर और शुभ को भी समझना। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का गति संयोग असाता वेदनीय के समान है। तो असाता वेदनीय के तो हमने देखा था चारों गति के साथ बन सकती है, वैसे उसका भी समझना। उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्य दृष्टि देव व मनुष्य गति से संयुक्त, यानी उच्च गोत्र किसके साथ बंधेगा, तो देव गति के साथ और मनुष्य गति के साथ। हमने पहले देखा था तिर्यंच गति और नरक गति के साथ नीच गोत्र का बंध होता है, तथा शेष तिर्यंच देव गति से संयुक्त बांधते हैं। शेष तिर्यंच यानी तीसरे चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जो है वो तो देवगति को ही बांधते हैं और उच्च गोत्र को भी बांधते हैं। अब ये बांधने वाले कौन है, तो हमने देखा था तिर्यंच जीव की बात चल रही है। सब प्रकृतियों के बंध के तिर्यंच ही स्वामी है। बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, कौन सा देखा था हमने, एक से पांच गुणस्थान, और बंध विनष्ट स्थान कहेंगे पांचवें गुणस्थान का अंत समय। पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, एक कौमा कौमा लगाते जाना, भय जुगुप्सा, तेजस कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुर लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय, इनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है। ये क्यों, ये कैसी प्रकृतियां सारे, अभी हमने जो नाम पढ़े हुए ध्रुव बंदी कहना उसको, वो है निरंतर बंदी, परंतु निरंतर बंदी क्यों है, तो वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। तो मिथ्या तो गुणस्थान में चार प्रकार का बंध कैसे, सादी अनादी ध्रुव और अध्रुव, तो सादी जो उपशम श्रेणी चढ़कर फिर उतरा है तो उसके लिए सादी कहेंगे, आदि आदि वो पहले हमने देखा था ना। अध्रुव क्यों, क्योंकि इसके बाद वो सम्यक तो प्राप्त करेगा, ऊपर उसके बंध उच्छित हो जाएगी, वो अध्रुव। शेष गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध होता है, क्योंकि उनमें ध्रुव बंध का अभाव है। ऊपर के गुणस्थान वाले वो तो नियम से अभी सम्यक तो एक बार प्राप्त किया है उन्होंने, तो वो ध्रुव बंध उनमें नहीं पाया जाएगा। शेष प्रकृतियों का सादी व अध्रुव बंध होता है। ये ध्रुव बंदी छोड़कर अन्य जो प्रकृतियां हैं, वो प्रतिपक्ष वाली है या जो कुछ भी है, उसका सादी और अध्रुव बंध है। तो पांचवें गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली प्रकृति हमने देखी। अब आगे 65 नंबर का सूत्र। નિદ્દા નિદ્દા પહેલાં પહેલાં થીન ગદ્ધિ અનંતાણુબંધી કોધ માણ માયા લોભ ઇથિ વેદ તિરીખાઉ મનુષ્યાઉ તિરીખ ગઈ મનુષ્ય ગઈ ઓરાલિય શરીર ચૌસંઠાણ સ કે ઉપર બિંદી લગાના ઓરાલિય શરીર અંગો વંગ યે એક શબ્દ હૈ પંચ સંગણન તિરીખ ગઈ મનુષ્ય ગઈ પાવગાણો પૂર્વી યાની તિરીખ ગઈ પાવગાણો પૂર્વી ઓર મનુષ્ય ગઈ પાવગાણો પૂર્વી દોનોં કો એક સાથ લિયા ઉન્હોને ઉજ્જોવ અપસથ વિહાય ગઈ દુભગ દુસ્સર અનાદેજ નિજા ગોદાણમ કો બંધો કો અબંધો એ દૂર હસવો ચાહીએ દુભગ દુભગ દેખો ઉસકે હી નીચે અભી ઉસકા અર્થ દેખતે અભી હમ 65 નંબર કા નિદ્રા નિદ્રા પ્રચલા પ્રચલા સ્ત્યાન વૃદ્ધિ અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ સ્ત્રીવેદ તિર્યગાયુ મનુષ્યાયુ તિર્યગતિ મનુષ્યગતિ ઔદારિક શરીર ચાર સંસ્થાન ઔદારિક શરીર અંગોપાંગ પાંચ સહનન તિર્યગતિ પ્રાયજ્ઞાનો પૂર્વી મનુષ્યગતિ પ્રાયજ્ઞાનો પૂર્વી ઉદ્યોત અપ્રશસ્ત વિહારગતિ દુર્ભગ દુસ્વર અનાદેય વ નીચ ગોત્ર ઇનકા કોણ બંધક ઓર અબંધક હૈ ઓર કોણ અબંધક હૈ ચાહીએ સહનન પાંચ ક્યો લિયા ઉપર ક્યા હૈ પંચ સંગણન એસા ક્યો હા એસા ક્યો સંસ્થાન ચાર લિયા ઓર સંગણન સહનન પાંચ લિયા હા હા નહીં નહીં એસા નહીં હૈ દેખો સમચતુરસ્ર સંસ્થાન જો હૈ વો ઉપર કે નોર્મલી અભી હમ ગુણસ્થાનો કી વિચ્છિતિ દેખેંગે પહેલે उसके बंदे की विच्छित्ति कहाँ होती है जहाँ देवगति के बंदे की विच्छित्ति होती है वो कहाँ है आठवें गुणस्थान में और वज्र वृषभ नारा सहनन के बंदे की विच्छित्ति जनरल कहाँ होती है चौथे में और मनुष्य और तिरियंचों में दूसरे में दूसरे गुणस्थान में होती है ना वो बंदे की विच्छित्ति क्योंकि વજ્ર ઋષભ નારાજ સહનન કિસકે સાથ બંધેગા મનુષ્ય ગતિ કે સાથ બંધેગા ઓર યે મનુષ્ય ગતિ કે બંધે કી વિચ્છિતિ યહાં હો રહી હૈ સંસ્થાન મેં એસા નહીં હૈ સંસ્થાન મેં વો ટોપ વાલા જો હૈ સમચતુરસ્ર સંસ્થાન વો દેવગતિ કે સાથ બનતા રહેતા હૈ દેવગતિ કે સાથ કોઈ ભી સહનન નહીં બનતા પરંતુ સંસ્થાન તો બંધેગા ઇસલિયે પાંચવે ગુણસ્થાન તક વો સમચતુરસ્ર સંસ્થાન કા હમને દેખા થા બંધ ये पहली जो लिस्ट देखी पांचवें गुणस्थान तक समचतुरस्र संस्थान बंद रहा था अब यहाँ जो अन्य तो सहनन हमने देखा था पहले में असंप्राप्त सुपाटी का सहनन के बंद की विच्छित्ति होती है ये गुणस्थान की बात कर रहे और दूसरे गुणस्थान में बीच वाले चार और चौथे गुणस्थान में वज्र ऋषभ नारा सहनन के बंद की विच्छित्ति होती है ये तो इन जनरल बात है પરંતુ મનુષ્ય ઓર તિર્યંચો મે દૂસરે હી ગુણસ્થાન મે યે છે પ્રકૃતિઓ કે બંદે કી વિચ્છિત્તિ દૂસરે મે હોતી જો નોર્મલી ચૌથે મે કહી જાતી હૈ કોન સી અવદારિક અવદારિક અંગોપાંગ મનુષ્ય ગતિ મનુષ્ય ગત્યાનુપૂરી મનુષ્યાયુ ઓર વજ્ર ઋષભ નારાજ સહનન ઇસલિયે ઉસકો યહાં લિયા અચ્છા એસા પ્રશ્ન પૂછેંગે તો જ્યાદા ક્લેરિટી બઢેગી ને અપની યા એસા ક્યો એસા પ્રશ્ન ઉઠના ચાહીએ જરૂર ઉઠના ચાહીએ દેખો સહનન તો પાંચ લીએ ક્યોકિ એ જો વજ્ર ઋષભ નારાજ સહનન જો હૈ વો તો મનુષ્ય ગતિ કે સાથ હી બંધેગા ઓર યહાં સારે મનુષ્ય ગતિ મનુષ્ય ગત્યાનુપૂર્વી મનુષ્યાયુ અવદારિક અવદારિક યે સબકા યહાં બંધ વિચ્છેદ હો રહા હૈ તિર્યંચો મેં દૂસરે હી ગુણસ્થાન મેં યે અભી જો હમને લિસ્ટ પઢી હૈ વો દૂસરે ગુણસ્થાન કી હૈ હમેશા દૂસરે ગુણસ્થાન મેં કિતને બંધ વિચ્છિત્તિ હોતી હૈ 25 અબ યહાં ગિનો જરા હા 25 ઓર 6 હો જાયગી ના હા ये तीन तो निद्रा हुई, ये चार सात हो गए ना, आपने गिनी नहीं इसमें? हाँ बहुत अच्छा, 31 हो गए। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 6 प्रकृतियों की बंधे विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में हो गई तिरियंचों के लिए, मनुष्य और तिरियंचों के लिए ये नियम है। जनरल बात करते हैं तब ये तो 25 की विच्छित्ति होती है, जो हम कहते हैं ना मिथ्यात्व की 16 और दूसरे गुणस्थान वाली 25, तीसरे में बंधे विच्छित्ति नहीं है। इसलिए जो मिथ्यात्व में से चौथे गुणस्थान में जाने वाला है सम्यक दृष्टि, उसके 16 और 25 41 प्रकृतियों की बंधे विच्छित्ति होती है। परंतु हमारे आपके यानी मनुष्यों के बारे में अगर बात करनी है तो 41 + 6 47 प्रकृतियों के बंधे विच्छित्ति होती है। तो मिथ्यात्व में बंधे योग्य थी 117, उसमें 47 एक साथ कट गई। कितने सारे बंधे रुक गए कि नहीं? आपका प्रश्न है तिर्यंच में पहला सहनन होता है, पहला है नहीं? आपका प्रश्न है तिर्यंचों में जो वज्र शब्द नारा सहनन है वो कौन बांधता है, कौन बांधता है का आपका प्रश्न का उत्तर, कौन सा जीव, तो तिर्यंच में कौन सा जीव आ सकता है? क्यों चारों गति वाले नहीं आते? हाँ तो चारों गति वाले बांध सकते हैं। नहीं आपके प्रश्न का मैं देखो सम्यक दृष्टि भी तिर्यंच गति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? मनुष्य सम्यक दृष्टि बांधेगा, देव सम्यक दृष्टि बांधेगा, तो नारकी सम्यक दृष्टि बांधेगा, तो सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि तिर्यंच गति की बंधे विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में होती है, बराबर। तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाले बांधेंगे, जो तिर्यंच गति बांध रहे हैं, पंचेंद्रिय जाति बांध रहे हैं, तो उसके साथ इसका बंध कर सकते हैं।
देखो सातवें नारकी, सातवें नरक का नारकी जब मरता है तब वह तिर्यंच ही होता है, हा? और ऐसा भी तिर्यंच हो सकता है कि वह दोबारा नरक में जावे, वो भी सातवें में, तो सातवें में जाने वाला नियम से वज्र ऋषभ नाराज वाला ही होता है। मिथ्या दृष्टि लेके जाएगा,
देखो अभी ये हमने प्रकृतियों के नाम देखे, यह सूत्र सुगम है। अब ये कौन बंधक है उसकी बात अभी बताएंगे। मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, इसका अर्थ शासादन में इनके बंधे की विच्छित्ति होती है। मिथ्या दृष्टि और शासादन समय दृष्टि बंधक हैं, फुल स्टॉप। ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। इसके द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। अब पहले में पहले कौन सा प्रश्न उठेगा, बंध पहले विचित्ति होती है क्या उदय की? तो स्त्यान वृद्धि आदि तीन, ये बंध पहले मिटता है कि उदय पहले मिटता है? हाँ अब ये सारे का बंध दूसरे में मिटने वाला है, और उदय कहाँ तक होता है? छठे तक। तिर्यंच अभी उसमें तो पांचवे तक कहेंगे हम, गुणस्थानों में छठे तक होते हैं। स्त्री वेद कौमा देना है, स्त्री वेद का उदय कहाँ तक है? अभी तिर्यंच है उसकी अपेक्षा से हम बात करेंगे, पांचवे तक होता है। तिर्यग आयु पांचवे तक, तिर्यक गति ये सब पांचवे तक है। औदारिक शरीर, हाँ चार संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, पांच सहनन, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी, उद्योत अप्रशस्त विहाय गति, दुस्वर और नीच गोत्र, इनका तिर्यक गति में उदय विच्छेद नहीं है। वो पांच पांचवे गुणस्थान तक चलते ही रहते, उदय का विच्छेद है ही नहीं उसके। शासादन गुणस्थान में केवल बंध विच्छेद ही है, बंध की तो विच्छित्ति है, क्योंकि अभी हमने तो लिस्ट जो पढ़ी है वो शासादन में बंध विच्छित्ति होने वाले प्रकृतियों की लिस्ट अभी हमने पढ़ी, परंतु इनके उदय की विच्छित्ति होती नहीं, वो तो पांचवे तक चलता ही रहता है उदय। विशेष इतना है कि तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। अब ये पांच गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में उदय है कि नहीं है? तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी का उदय कहाँ मिटता है? चौथे में। क्यों? हाँ देखिए, विग्रह गति में चौथे की क्यों बात की? चौथा हो सकता है इसलिए। हाँ तो चौथे तक विग्रह गति में कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? पहला, दूसरा और चौथा। और प्रायोज्ञानुपूर्वी कोई भी हो उसका उदय कब होता है? मात्र विग्रह गति में होता है, अन्यत्र तो उसका उदय ही नहीं है। तो ये चौथा गुणस्थान पॉसिबल है विग्रह गति में, तिर्यंचों में, चारों गति में पॉसिबल है। तो वहाँ ये प्रायोज्ञानुपूर्वी का उदय है, इसलिए उसके उदय की विच्छित्ति चौथे में कहेंगे। पांचवें गुणस्थान में वो सभी पर्याप्त जीव है, तो वहाँ तो विग्रह गति होती नहीं है, या विग्रह गति में पांचवा गुणस्थान होता नहीं है, इसलिए प्रायोज्ञानुपूर्वी का उदय वहाँ रहता ही नहीं है। इसलिए कहेंगे चौथे में विच्छित्ति हुई। किसकी? उदय की। और बंध कहाँ रुका? दूसरे में। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय, क्योंकि सांसाधन गुणस्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर तत्पश्चात असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में उदय का विच्छेद होता है। अब अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय दोनों साथ में विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि के चरम समय में दोनों का विच्छेद देखा जाता है, विच्छेद हुआ है, विच्छेद करना। विच्छेद होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगति प्रायज्ञानुपूर्वी का तिर्य गति में उदय ही नहीं है, परंतु बंध का विच्छेद अभी यहाँ दूसरे में होता है, क्योंकि वहाँ इनके उदय का विरोध है। इसी कारण इनके बंध और उदय पूर्व या पश्चात विच्छेद होने का विचार नहीं है, इसलिए उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। दुर्भग और अनादेय का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय। अभी हमने जो पढ़ी उसमें दुर्भग अनादेय थी ना, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में न रह गया, इनके बंध के नष्ट हो जाने पर असंयत सम्यक दृष्टि में उदय का विच्छेद देखा जाता है। चौथे गुणस्थान वाले जो 17 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति देखी थी, उसमें दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति देखी थी। अब ये स्वोदय से बनती के परोदय से उसकी चर्चा चलेगी। स्त्यान वृद्धि आदि तीन अनंतानुबंधी चतुष्क, त्रिवेद, चार संस्थान, पांच सहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहार गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका स्वोदय परोदय से बंध होता है। देखो स्त्यान वृद्धि आदि तीन, तो उनका उदय चलते हुए भी बंध होगा, जहां उदय नहीं है वहां भी बंध होगा, यानी अन्य दर्शनावरण का उदय चल रहा है, स्त्यान वृद्धि का नहीं है, जागृत अवस्था चल रही है, फिर भी बंध तो हमेशा होता है, क्योंकि वो ध्रुवबंधी प्रकृति है। अनंतानुबंधी चतुष्क भी ध्रुवबंधी है। स्त्रीवेद स्वोदय परोदय, हाँ, और योनिमति में कहेंगे हम स्वोदय से बंध हो रहा है, यानी वो स्त्रीवेद बांधे तो की बात है, हो सकता है योनिमति पुरुषवेद बांधे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। नहीं तो योनिमति उनको हमेशा स्त्री रहना पड़े। हाँ चार संस्थान, यानी अपने अपने उदय में भी बन सकते हैं, अन्य उदय में भी बने। पांच सहनन की भी वही बात है। उद्योत, किसी को उदय है किसी को नहीं भी है, तो उसको भी बंद तो होता है। यही बात ये सबके लेना, अभी हमने सब पढ़ी ना। किंतु विशेष इतना है कि तिर्यंच योनियमतियों में स्त्री वेद का स्वोदय से ही बंद होता है। यानी योनिमति स्त्री वेद का बंद करते हैं तो उनका स्त्री वेद का उदय चल रहा है और स्त्री वेद का बंद हो रहा है। तिर्यक आयु, तिर्यक गति और निज गोत्र का स्वोदय से ही बंद होता है। मनुष्यायु, मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का परोदय से बंद होता है, क्योंकि इनका यहाँ उदय का अभाव है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग का स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि विग्रह गति में इनका उदय नहीं रहता है। क्योंकि हमने देखा था शरीर संबंधी जो नाम कर्म है वहाँ वो पर्याप्ति शुरू होने के पहले समय से इसका बंद नहीं, उदय शुरू हो जाता है। उदय की बात है, विग्रह गति में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग का उदय नहीं है। तो जीव कहीं से मरकर तिर्यंच गति में आया तो उसको तिर्यंच गति कब से कहेंगे? विग्रह गति के पहले समय से कहेंगे, ये तिर्यंच गति का उदय चल रहा है। परंतु उस जीव को औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और संस्थान नाम कर्म जो कुछ है, या प्रत्येक शरीर नाम कर्म का जो उदय है, वो पर्याप्ति के पहले समय से शुरू होगा। यहाँ उसका उदय नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं वो स्वोदय परोदय दोनों से बनते हैं, पर्याप्त होने के बाद या पर्याप्ति शुरू होने के पश्चात। इसके उदय में उसका बंद हो सकता है तो उसको कहेंगे स्वोदय से बंद है। विग्रह गति में जहाँ उदय नहीं है और बंद हो रहा है वहाँ कहेंगे परोदय से बंद है। तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी का भी स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि विग्रह गति को छोड़कर अन्यत्र उसके उदय का अभाव है। विग्रह गति में उसका उदय चल रहा है और उसके उदय में तिर्यक गति बन रही है तो कहेंगे स्वोदय से बन रही है। और बाद में विग्रह गति के बाद यानी अन्य जो रेगुलर में, तो उसका उदय ही नहीं है अनुपूर्वी का और वो बन रही है तो कहेंगे परोदय से बन रही है। ऐसा भी होगा ना, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी का उदय चल रहा है तो अन्य कौन सी प्राज्ञानुपूर्वी बांध सकता है जीव? हाँ, देवगति नहीं बांधेगा। तो मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का या तिर्यंच गति प्राज्ञानुपूर्वी का बंद होगा। वहां दो ऑप्शन है वहां पर। अब ये निरंतर बंध की बात चलेगी, स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंत। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में देवगति और देवगति प्राज्ञान, हाँ, नरक गति का और देवगति का बंध नहीं होता। तो अपने अपने गति के साथ वो प्राज्ञानुपूर्वी बनती है। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का निरंतर बंध होता है क्योंकि ये ध्रुव बंधी है, ये तो हमने बहुत बार देखा। स्त्री वेद, मनुष्य गति, चार संस्थान, पांच सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त श रह गया है, अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय, इनका सांतर बंध होता है क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम देखा जाता है। देखो इसमें स्त्री वेद के लिए ये पहले दूसरे गुणस्थान की बात है ना, तो उसके लिए प्रतिपक्ष है, मनुष्य गति के लिए भी है, चार संस्थान में भी वो किसी का एक बंद होगा, पांच सहनन में भी मनुष्य गति के लिए प्राज्ञानुपूर्वी, उद्योत में प्रतिपक्ष नहीं है फिर भी एक समय में बंद रुक सकता है उसका, ये अप्रतिपक्षी है। परंतु अध्रुव प्रकृतियों में हमने इसको देखा था, अप्रशस्त के लिए, व्याय गति के लिए प्रतिपक्ष है, दुर्भग दुस्वर अनादेय के लिए भी प्रतिपक्ष है। अब तिर्यक आयु और मनुष्य आयु का निरंतर बंध होता है क्योंकि आयु कर्म निरंतर बंधी देखी थी हमने, क्योंकि जगन्य से भी इनका एक समय बंध नहीं पाया जाता, जिसका एक समय बंध पाया जाता है जगन्य से उसी को सांतर कहा था, तिर्यक गति अवतारिक द्विक, तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र, इनका सांतर निरंतर बंध होता है। क्योंकि देखो सांतर किन के लिए, तिर्य गति के लिए ऑप्शन है ना वहाँ अन्य गतियों का, तो वहाँ तो हम सांतर कहेंगे, हाँ वो सब के लिए। अब निरंतर किसके लिए कहेंगे, तो जो हमेशा तिर्यंच गति का ही बंद कर रहे हैं, अन्य गति बांधते ही नहीं है, ऐसे भी कोई जीव होगी? हाँ, अग्नि का एक और वायु का एक, आप कौन सी बात कर रहे हैं? इतर निगोद भी मनुष्य गति में आ सकते हैं ना? देखो क्योंकि तेज का एक वायु का एक के तथा तेज का एक वायु का एक सप्तम पृथ्वी के नारकियों में से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच और उसके पर्याप्त व योनियों में उत्पन्न हुए जीवों के और सनत कुमार आदि देव व नारकियों में से आकर तिर्यंचों में उत्पन्न हुए जीवों के इनका निरंतर बंध देखा जाता है। ओ देखो क्या कहते हैं, तेजो का एक और वायु का एक जीव तो इसका ही बंध करते हैं, निरंतर बंध है ना, यानी अंतर्मूर्त तक तो लगातार होगा, उसको निरंतर कहा हमने। फिर दोबारा लिया कि तेजो कायिक और वायु कायिकों में से जो तिर्यंचों में आए हैं और सातवें पृथ्वी के नारकियों में से जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हुए हैं वे भी तिर्यक गति का ही बंद करेंगे, निरंतर बंद कहा। मेरे ख्याल से वो अंतर्मूर्त तक तो अन्य बंद होता ही नहीं होगा उसका। हमने देखा था सातवें नरक में आने वाला कोई मिथ्या तो ही गुणस्थान में रहता है, हाँ, और वो तिर्यंच गति को ही बांधता है, परंतु अंतर्मूर्त तक तिर्यंच गति को बांधता होगा क्योंकि फिर दोबारा नरक में भी तो जा सकता है ना, का तिर्यंच ही होता है वो, सातवें नरक से निकला हुआ तिर्यंच होता है और दोबारा तिर्यंच होता है उसमें से। नहीं, बीच में एक बीच डायरेक्ट सातवें से निकल कर नहीं होगा, वो बीच में कोई एक भव है तिर्यंच का, मत्स्य में जाएगा फिर सातवें नरक का नारकीय, हाँ, यानी ये निरंतर का बनेगा, अंतर्मूर्त तो उसको तिर्यंच गति ही बंधेगी, ये बात है उसकी। देखो यहाँ निरंतर बंद की बात है ना, तो वहां से आया हुआ अपर्याप्त अवस्था में है तब तक तो तिर्यंच गति को ही बांधेगा, नर गति को तो बांध नहीं सकता ना तब तक। हाँ, नरक में जा सकता है, पर मुझे कहीं पढ़ा है मैंने सातवें से दोबारा दो बार सातवें में डायरेक्ट जा सकता है, तो उसके लिए हाँ दो भाव होते हैं ना उसके, नहीं हाँ, क्योंकि वो उसको मत्स्य में जाने के लिए और एक भाव लेना पड़ता है, मत्स्य में जाकर सातवें नरक में जाता है वो, परंतु उसको गौण करके लगातार सातवें में दो बार जाता है ऐसा आता है, लगातार सातवें नरक के दो भाव, यानी बीच में तिर्यंच का करके, परंतु तिर्यंच में दो भाव करने पड़ते उसको। एक संगी तिर्यंच का हो यानी हिंसक पशु और उसमें से मत्स्य बनेगा और मत्स्य में से वहां जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं। देखो अब जब वो उसका नंबर आएगा तब हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ क्या बता रहे, तेज कायिक और वायु कायिक में जो जीव है वो तो तिर्यंच गति का ही बंद करते हैं पूरा लाइफ टाइम। अब ये तेज कायिक में से जो तिर्यंच में आए हुए हैं, वायु कायिक में से आए हुए, या सप्तम नरक में से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंश में, वो तो पंचेंद्रिय तिर्यंश ही होते हैं, पर्याप्त हो गए या योनियों में उत्पन्न हो गए, उन जीवों को इनका निरंतर बंध देखा जाता है। निरंतर बंध का अर्थ एक समय में नहीं रुकता है, अंतर्मूर्त तो होगा ही। विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थान में सांतर ही बंध होता है, क्योंकि वह गुणस्थान तेजकायिक और वायिकायिक जीवों में नहीं होता। आप कुछ समझ सनत कुमार की बात की, वो बीच का छोड़ गया क्या? सनत कुमार आदि देव व नारकियों में से आकर तिर्यंचों में उत्पन्न हुए जीवों के, ओ अभी इसका सम उत्तर आ गया। देखो सनत कुमार आदि देव, सनत कुमार से ही क्यों लिया? पंचेंद्रियों में होते हैं, नहीं उत्पन्न होते हैं, पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको लिया। तो सनत कुमार आदि में कहाँ तक लेना? हाँ, बारहवें सहस्रार तक के वो तिर्यंचों में उत्पन्न हो सकते हैं। अभी तिर्यंचों में उत्पन्न हो गए तो अपर्याप्त अवस्था में देवगति और नरगति का तो बंध नहीं करेंगे, है ना? तो इसलिए, और वहां उत्पन्न हुए तो मिथ्या दृष्टि होगी ना, नरक से या देव से कोई सम्यक दृष्टि तो तिर्यंचों में जाता नहीं है। नारकी सम्यक दृष्टि हो, देव सम्यक दृष्टि हो या तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो, वो तिर्यंच में नहीं आ सकते। मनुष्य सम्यक दृष्टि क्षायिक हो तो तिर्यंच में सम्यक के साथ जा सकता है। क्षायिक कहो, कृतकृत्य वेदक कहो, एक ही बात है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, सनत कुमार से या नारकियों में से, यहाँ कोई भी नारकी लिया, जो तिर्यंच में उत्पन्न हुए है तो अपर्याप्त काल भी उसका अंतर्मूर्त का रहता है। पर्याप्त होने वाले हैं, परंतु जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक का जो निवृत्ति अपर्याप्त काल है, उस काल में दोबारा वहां नरक गति देवगति आदि का बंध नहीं होता है, तो तिर्यंच गति का बंध, हाँ मनुष्य गति भी उस उतने काल तक नहीं बांध देंगे, क्योंकि अपर्याप्त काल में वो मिथ्या दृष्टि जीव है। अपर्याप्त काल की बात है। विशेषता क्या बोली बताई उन्होंने, सासादन गुणस्थान वाले को सांतर ही बंध होता है, क्योंकि वहां तो कोई तेज कायिक और वायु कायिक का कोई सवाल ही नहीं है। और सातवीं पृथ्वी में सासादन तो वहां के जीवों को हो सकता है, पर सासादन में कोई मरता नहीं, वहां इस गुणस्थान के साथ निर्गमन भी नहीं होता। हमने देखा था मिथ्यात्व में जाएगा, आयु का बंद करेगा और मिथ्यात्व से ही वहां से निकलेगा। औदारिक द्विक का सांतर निरंतर बंद होता है, इन प्रकृतियों के प्रत्यय सब गुणस्थानों में पंचस्थानिक प्रकृतियों के समान है। पंचस्थानिक यानी पांचों ही गुणस्थानों में बनने वाले, जो हमने पहली लिस्ट उनकी देखी थी। विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायु का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में कार्मण प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि कार्मण प्रत्यय के साथ कोई आयु का बंध नहीं करता। हाँ? तो औदारिक मिश्र के साथ होगा कि नहीं होगा? हाँ? आप क्या कहते हैं? तो अपर्याप्त जीवों को कैसे बांधेगी आयु? उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। देखो क्या कहते हैं, तिर्यक आयु का और मनुष्यायु का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जो बंध है, वहां कार्मण कायोग वाले को उसका आयु का बंध नहीं है। गति के बंध की बात नहीं हो रही, आयु के बंध की बात है। गति का बंध तो होगा, आयु बंधेगी नहीं, कार्मण का योग अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, अवदारिक मिश्र अवस्था में हो सकता है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में अवदारिक मिश्र व कार्मण प्रत्यय नहीं होते, ये पंचेंद्रिय पर्याप्तों की बात यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि पर्याप्त जो जीव है वो पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही आयु का बंध करेंगे। अपर्याप्त अवस्था यानी जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उनका मरण भी नहीं होगा, आयु का बंध भी नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि करोड़ पूर्व की आयु बांध के आया है, पर्याप्ति पूर्ण होने पर अंतर्मुहूर्त में वो सारे उदीर्णा होकर कदलीघात होकर मरेगा, पर उसके पहले आयु बांधेगा उतने काल में। कदलीघात करता है ना तो बंधा जो बद्धायुष्कत के तो होता ही नहीं है, तो वो कदलीघात करने वाला वो कदलीघात करेगा तभी आयु का बंध करेगा और उतने काल में मरेगा। तो करोड़ पूर्व के आयु के परमाणु वो उतने अंतर्मुहूर्त में खिर जाएंगे उसके। ऐसे हो सकता है, इसलिए ये पर्याप्तों को अलग लिया। क्योंकि तिर्यंच योनिनी भी वो पर्याप्त जीव होते हैं ना, लब्धिय पर्याप्त तो नपुंसक वेदी होते हैं, इसलिए योनिनी भी कहो या तिर्यंच पर्याप्त कहो, ये पर्याप्त जीव होते हैं। चार प्रकार के तिर्यंचों में सासाधन गुणस्थान में औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं होते क्योंकि अपर्याप्त काल में उसके आयु का बंध नहीं होता। यानी ये तिर्यक आयु और मनुष्यायु के बंध की बात चल रही है। कहाँ के लिए? उसमें सासाधन गुणस्थान वालों को। हाँ, तो उस काल में औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं होते हैं। ये सासाधन गुणस्थान में ये अपर्याप्त अवस्था तो होती है, सासाधन गुणस्थान वाला मरकर विग्रह गति में भी होता है, औदारिक मिश्र भी अवस्थाएं तो होती है, उस काल में उसको आयु का बंध नहीं होता। इसलिए तिर्यंचायु और मनुष्यायु का बंध करने वाले सासाधन सम्यक दृष्टि को ये प्रत्यय नहीं होते। कौन से? औदारिक मिश्र और कार्मण। यानी सासाधन अवस्था में जीव तिर्यकायु और मनुष्यायु का बंध तो कर सकता है, तो वो कौन सा पर्याप्त जीव है? यानी मरण का समय आया है, मरण के पहले पहले सासाधन में गया और वहां आयु का बंध हुआ, ऐसा हो सकता है। अब कौन से गति के साथ इसकी बात चलेगी? स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क के मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त और सासाधन समय दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त बंधक है। ये तीन निद्रा और अनंतानुबंधी को बांधने वाले की बात चल रही है। ये तो ध्रुव बंदी है और सभी गतियों के साथ इसका बंध होता है दूसरे गुणस्थान तक। स्त्री वेद को नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, मनुष्यायु मनुष्य गत्यानुपूर्वी को मनुष्य गति से संयुक्त, तिर्यक आयु तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी और उद्योत को तिर्यक गति से संयुक्त, औदारिक शरीर ये किस गति से संयुक्त होगा? औदारिक शरीर का बंध हाँ तिर्य गति के साथ भी और मनुष्य गति के साथ भी। तो ये शरीर लिया, संस्थान लिया, अंगोपांग लिया, ये दोनों के साथ होगा। तो औदारिक शरीर चार संस्थान, औदारिक शरीर शरांगोपांग हुआ, शरीर अंगोपांग री रह गया बीच में, औदारिक शरीर अंगोपांग और पांच सहनन को तिर्य गति व मनुष्य गति से संयुक्त तथा अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और निज गोत्र को देव गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त बांधते हैं। अन्य तीनों ही गति के साथ वो बन सकती हैं। देव गति के साथ वो प्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी, ये अप्रशस्त नहीं बंधेगी। इन प्रकृतियों के बंध के तिर्यंच स्वामी है, क्योंकि हम तिर्यंचों की ही बात कर रहे हैं। बंध अध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। स्त्यान वृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी ब के ऊपर बिंदी अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध है। क्यों? सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव, ये ध्रुव बंधी प्रकृतियों का मिथ्यात्व गुणस्थान में चार प्रकार का बंध पाया जाता है। सासाधन गुणस्थान में दो प्रकार का बंध होता है क्योंकि वहां अनादि और ध्रुव बंध का अभाव है। यानी सादी और अध्रुव होता है। शेष प्रकृतियों का बंध सादी व अध्रुव होता है क्योंकि वे अध्रुव बंदी है। देखो बाकी तो पहले से अध्रुव बंदी थी जो प्रतिपक्ष वाली है, परंतु जो ध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं वो भी सासाधन के लिए वो सादी और अध्रुव हो जाती। क्योंकि दूसरे गुणस्थान में इसके बंध विच्छित पाई जाती है और दूसरे में आने वाला तो ऊपर से आया है, ऊपर के गुणस्थान से, तो उसका बंध वो सादी हुआ है। समझ में आया प्रेरणा बे? ये अनंतानुबंधी का बंध दूसरे गुणस्थान वाले के लिए सादी है कि अनादि है? हमने देखा अनंतानुबंधी का तो अनादि से चला आया था, तो मिथ्या दृष्टि में तो अनादि से बनता आया है। अब दूसरे गुणस्थान वाले को सादी है कि अनादि है? सादी ही है। क्यों? क्योंकि वो जीव कैसा है, पहले से चौथे में गया तो अनंतानुबंधी का बंध रुक गया था, चौथे में से दूसरे में आया तब फिर शुरू हुआ, तो उसका सादी बंध है। अध्रुव तो है ही क्योंकि वो अभी ध्रुव नहीं रहा। अब अगली लिस्ट देखेंगे हम, एक स्थानीय वाले। पहले हमने अभी द्विस्थानीय की देखी थी ना, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली। हाँ, अब पहले की बात। मिच्छत्थ नौ से वेद निरयाऊ निरय गई ए इंद्रिय बे इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिय जादि हुंड संठान असंपत्त सेवट्ट संगणन निरय गई पावगानु पूवी आदाव थावर सुहम अपजत सहारण शरीर नामानम को बंधो को अबंधो। को दो बार हुआ है, को बंधो को अबंधो, लास्ट वाला को नहीं चाहिए। मिथ्यात्व नपुसक वेद नारकायु नरक गति एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति हुंड संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका शरीर सहनन नरक गति प्रायज्ञानु पूर्वी आताप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर नाम कर्मों का कौन बंधक और कौन अबंधक है? यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा, यानी मात्र मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इसका बंध है, यहीं पर उसकी विच्छित्ति होती है। मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष तिर्यंच अबंधक है, इसका अर्थ कहते हैं। मिथ्यात्व एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय आताप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इनका उदय कब तक है? पहले तक है और बंध भी यहीं तक है। इनका बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को छोड़कर उपरिम गुणस्थानों में इन प्रकृतियों के उदय का अभाव है। नपुसक वेद करना देव हुआ है। नपुसक वेद हुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन इनके बंध का ही विच्छेद है, उदय का नहीं। क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान में तो क्या ऊपर भी इसका उदय होता है ना? नपुसक वेद का उदय कहाँ तक होता है? उदय नवे तक सवेद भाग तक, पहले भाग तक। हुंड संस्थान तेरवे तक, उदय की बात चल रही है। और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन सातवें तक तो छह सहनन पाए जाते हैं, वहां तीन सहनन की विच्छित्ति होती है उदय की। तो यहाँ उदय का विच्छेद नहीं है, बंध का ही विच्छेद है। पहले गुणस्थान में जो इनका विच्छेद कहा है बंध का ही विच्छेद है, उदय तो ऊपर के गुणस्थानों तक चलता है। क्योंकि सब गुणस्थानों में इनका उदय देखा जाता है। ये लिखने के लिए सब लिखे है, परंतु अब यहाँ तिर्यंच में तो सब में है। गुणस्थानों में मनुष्य गति की बात करेंगे तो अलग अलग गुणस्थानों में। नारकायु नरगति और नरगति प्राज्ञान पूर्वी का तिर्यक गति में उदय न होने से इनके पूर्व या पश्चात बंधोदय विच्छेद होने का विचार नहीं है। अब वो स्वोदय परोदय की बात करेंगे। मिथ्यात्व का उदय है बंध स्वोदय से होगा। नारकायु नरक गति तिर्यक गति प्राज्ञान पूर्वी का परोदय से, क्योंकि यहाँ उदय तो तिर्यंच गति का चल रहा है। शेष प्रकृतियों का स्वोदय परोदय से ही बंध होता है। विशेषता यह है कि पंचेंद्रियादिक तीन प्रकार के तिर्यंचों में एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति आताप स्थावर सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियों का भी परोदय से बंध होता है। देखो जो जीव तिर्यंच एकेंद्रिय जाति का बंध कर रहा है, मिथ्या दृष्टि करता है ना, तो वो कौन हो सकता है? एकेंद्रिय का नया भी बंध चल रहा है तो वो जीव एकेंद्रिय स्वयं एकेंद्रिय भी हो सकता है, द्विंद्रिय भी हो सकता है, तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय भी हो सकता है। तो एकेंद्रिय के उदय में एकेंद्रिय का बंध करने वाले कहेंगे स्वोदय से कर रहे हैं, और पंचेंद्रिय जो जीव स्वयं है पंचेंद्रिय जाति का उदय चल रहा है और एकेंद्रिय का बंध कर रहे हैं तो हम कहेंगे परोदय से कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है पंचेंद्रियादिक तीन प्रकार के तिर्यंच यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमति। उसमें अपर्याप्त को भी ले सकते हैं। तो वो जब एकेंद्रियादिक एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय का बंध परोदय से नहीं, हाँ अपर्याप्त की बात नहीं लिए, सूक्ष्म और साधारण लिया केवल, यानी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त जो कुछ है पंचेंद्रियों के भेद, यहाँ अपर्याप्त नाम कर्म का उल्लेख नहीं है, वो तो अलग से बताएंगे अभी। तो इनका परोदय से बंध होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनियों में अपर्याप्त का परोदय से बंध होता है। परोदय से उनके उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है और वो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहे हैं तो परोदय से बंध है। योनियों में नपुंसक वेद का परोदय से बंध होता है। योनियों में उदय किसका चल रहा है? स्त्री वेद का, और बंध कर रहे नपुंसक वेद का, तो परोदय से बंध होता है। यहाँ पुरुष वेद को क्यों नहीं लिया? पहले गुणस्थान में तीनों ही वेद का बंध होता है, अकेले नपुंसक वेद की बात क्यों की? पहले गुणस्थान में विच्छित्ति बंध विच्छित्ति होने वाले प्रकृतियों की लिस्ट चल रही है, उतने ही उन प्रकृतियों में नपुंसक वेद को ही लेना है अकेला, उसकी बात नहीं है। हमारी लिस्ट किस कौन सी चल रही है? देखो ये लिस्ट अपनी लिस्ट कौन सी है, उस लिस्ट के प्रकृतियों की बात चल रही है। पुरुष वेद को बांधता है कि नहीं बांधता उसका सवाल ही नहीं है। ये देखो ये जो हमने 67 नंबर के सूत्र में जो लिस्ट देखी है, पहले गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली 16 प्रकृतियां, उसमें नरक गति है या नपुंसक वेद है ये जो कुछ है उसकी बात चल रही है। यहाँ स्त्री वेद के बंध की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले ये 16 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी प्रकृति का बंध स्वोदय से परोदय से उसकी बात चल रही है। तो योनिमति को छोड़ दो तो अन्य में नपुंसक वेद के उदय में नपुंसक वेद का बंध हो रहा है तो वहां हम कहेंगे स्वोदय से, और अन्य के उदय में तो उसको कहेंगे परोदय से। परंतु योनिमति में तो एकमात्र वो स्त्री वेद का ही उदय है तो इसलिए वहां कहेंगे परोदय से बंध। मिथ्यात्व और नारकायु का निरंतर बंध होता है। आयु तो हमेशा निरंतर बंधी कहलाती है क्योंकि एक समय में रुकती नहीं है कभी। निरंतर का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि हर समय वो तो ध्रुव बंदी नहीं, वो निरंतर बंदी है। निरंतर बंध और ध्रुव बंध में अंतर है। निरंतर बंध है कम से कम अंतर मूर्त, उतना तो बंध होगा। मिथ्यात्व तो ध्रुव बंदी है, इसलिए वो तो निरंतर बंदी है ही है। जो ध्रुव बंदी है वो तो निरंतर बंध होती है, क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम नहीं होता। शेष प्रकृतियों का बंध शांतर होता है, क्योंकि एक समय से इनके बंध का विश्राम देखा जाता है। अन्य जो है ना, एक इंद्रिय आदि जाती आतप है और कुछ कुछ जो है। मिथ्यात्व, नपुसक वेद, हुंड संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, नरक गति, नरक गति प्राज्ञानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनके 53 प्रत्यय होते हैं। ये 3 इंच की बात है ना, तो उसमें तो पहले ही आहार द्विक तो पहले 55 थे, 55 में से वैकरिक द्विक निकाले तो 53 रह गए। योनिमतियों में 51 प्रत्यय होते, कौन से गए? पुरुष वेद और नपुसक वेद। नारकायु के यानी नरकायु बांधने वाले तिर्यंचों के, तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में 51 प्रत्यय होते हैं, कौन से दो गए? नारकायु के बांधने वाले पर्याप्तों में। क्या स्त्री वेद वाले नहीं बांध सकते नारकायु? मिश्र नहीं रहेंगे, मिश्र और कारमाण वो जो है उस अवस्था में नारकायु का बंध नहीं होगा, इसलिए उन दोनों को निकालना है। यानी वहां हम वेदों को कम किया था, यहाँ वेदों को रखना और औदारिक मिश्र और कारमाण को निकालना, ख्याल आता है? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में 49 प्रत्यय होते हैं। अभी योनिमति में वेद भी दो निकाले थे, और योनिमति जब नारकायु बांधती है तो उसमें मिश्र और कारवण वो भी निकालना, इसलिए वहाँ 49 हो जाएंगे। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो